आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। विक्टोरिया के प्रीमियर को पड़ सकती है स्पाइनल सर्जरी की जरूरत, डॉक्टर लेंगे फैसला। भारत में किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार के आगे अविश्वास प्रस्ताव का खतरा, और भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना का अनोखा रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर आज इस बात पर फैसला ले सकते हैं कि क्या विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज को स्पाइनल सर्जरी की जरूरत है। मॉर्निंगटन प्रायद्वीप में एक हॉलिडे हाउस में गिरने से उनकी कई पसलियां टूट गई हैं, साथ ही वर्टिब्रा को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद 9 मार्च की रात को उन्हें एल्फ्रेड ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अब ये तय कर रहे हैं कि क्या 48 वर्षीय प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज की T7 कशेरुका के नुकसान को ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होगी। आपको बता दें कि उनकी अनुपस्थिति में जेम्स मर्लिनो कार्यवाहक प्रीमियर के तौर पर काम करते रहेंगे। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लेडीज बैरेजैक्लियन उन नेताओं में शामिल हो गई हैं जिन्होंने कि एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली है। प्रीमियर बैरेजैक्लियन, स्वास्थ्य मंत्री ब्रेड हजार्ड और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैरी चेंट ने सेंट जॉर्ज अस्पताल में इस वैक्सीन की पहली खुराक ली। अब इन्हें 12 हफ्तों के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही अब तक न्यू साउथ वेल्स में करीब 27,000 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जिनमें कि राज्य के एज केयर के लोग शामिल नहीं हैं। प्रीमियर बैरेजैक्लियन ने कहा है कि राज्य के पहले 3 हफ्तों में लोगों को 35,000 खुराक देने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रास्ते पर हैं।
We know that when the vast majority of the population is vaccinated, that increases our ability to not only ease restrictions, but to start thinking beyond our national borders and what it means for international travel. We know the biggest hindrance to our economic development and growth in the next little while will be our ability to open up to the rest of the world.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अटॉर्नी जनरल क्रिश्चियन पोर्टर के खिलाफ ऐतिहासिक बलात्कार के आरोप के मामले में सॉलिसिटर जनरल से सलाह लेने का फैसला किया है। श्री पोर्टर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि साल 1988 में उन्होंने सिडनी में एक 16 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था, जबकि वो खुद 17 साल के थे। पूर्व सॉलिसिटर जनरल जस्टिन ग्लीसन ने सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार इस बारे में कानूनी सलाह ले कि क्या श्री पोर्टर अटॉर्नी जनरल के पद के लिए उचित व्यक्ति हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री मॉरिसन कहते हैं,
He's entitled to his view. He is not someone who's been a particularly big fan of our government, I should say. But that said, he's entitled to his opinion on this. But that is not the advice that I've been provided at any time during the course of managing this matter.
वर्तमान और पूर्व छात्रों से बलात्कार की जानकारियों के बाद अब क्वींसलैंड में यौन सहमति को पढ़ाए जाने के बारे में समीक्षा की जाएगी। ये बात सिडनी की एक 22 वर्षीय महिला द्वारा चैनल कॉन्टोस द्वारा शुरू किए गए एक राष्ट्रीय अभियान के बाद सामने आई है, जिसमें कि क्वींसलैंड के कई युवाओं ने यौन हिंसा की कई परेशान करने वाली कहानियां साझा की। राज्य की शिक्षा मंत्री ग्रेस ग्रेस ने कहा कि ये समीक्षा इस बात की जाँच करेगी कि स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला सम्मानजनक संबंध कार्यक्रम क्या यौन सहमति और रिपोर्टिंग को भी संबोधित करता है। अगर कोई श्रोता यौन हिंसा से संबंधित जानकारी या मदद चाहता है तो 1800 रिस्पेक्ट को 1800-737-732 पर संपर्क कर सकता है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फोसी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहतरीन प्रतिक्रिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों की प्रशंसा की है। डॉक्टर फोसी ने अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन बातचीत में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पॉल कैली के साथ शिरकत की, जिसमें कि दोनों देशों में कोविड-19 की स्थिति की तुलना की गई। डॉक्टर फॉसी ने कहा कि आंकड़े दर्शाते हैं कि उनके देश का महामारी से निपटने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कम प्रभावशाली रहा।
If you look at the monitoring of how well we locked down, we never really locked down completely. We had a terrible economic impact, but we never really locked down as well or as completely as Australia did. And I think a combination of the other things that Australia did correctly really led to the fact that they've done really quite well when you compare them to other countries in the world.
और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार तेज होने के साथ नित नए कीर्तिमान भी बन रहे हैं। मंगलवार को बेंगलुरु में 103 साल के बुजुर्ग महिला जे कमलेश्वरी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। अब तक के टीकाकरण के मुताबिक वो देश को में कोविड 19 वैक्सीन लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल के हवाले से ANI ने ये रिपोर्ट दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी 103 साल के एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। नोएडा में महावीर प्रसाद माहेश्वरी परिवार के साथ अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ टीकाकरण कराने शहर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी को आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि सरकार का समर्थन करने वाले दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। वहीं दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार में मौजूद बीजेपी का कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से JJP पर दबाव देखा जा सकता है। JJP के विधायकों ने कबूल किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में किसान उनका बहिष्कार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कई चेहरों को बेनकाब कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे ये पता चल जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और कौन नहीं।
ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट को समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया, और JJP के खुद विधायक आपने सुना कि इनकी बात निंदा कर रहे थे। बाकी जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज उठाना, जो जनता की भावना उठाएंगे।
भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में बजट पेश करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया था, और तभी से अटकलें लगने लगी थी कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के बाद एक पत्रकार सम्मेलन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी। उन्होंने कहा कि ये BJP में ही संभव है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए।
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने BJP पर राज्य में अस्थिरता लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खुद BJP आलाकमान को ही राज्य सरकार के कार्यों पर विश्वास नहीं है, इसी वजह से लोगों के गुस्से से बचने के लिए चेहरा बदला जा रहा है।
भाजपा उत्तराखंड पर राजनीतिक अस्थिरता थोपने की दोषी है, और उन्होंने ये माना है भाजपा ने कि हम एक अच्छी पर्पसफुल सरकार नहीं दे सके, इसीलिए उन्होंने जनता के गुस्से से बचने के लिए चेहरे बदल का सहारा लिया है।
उधर राज्य में नया नेता ढूंढने के लिए अब BJP विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। खबर है कि इस बैठक से ठीक पहले BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और दुष्यंत गौतम ने बीजापुर गेस्ट हाउस में अलग अलग खेमों के विधायकों के साथ बैठक की है, जिसमें विधायकों का मन टटोला जा रहा है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.98 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 76 सेंट्स थी। और अब खबर खेल के मैदान से। महिला क्रिकेट में साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्मृति मंदाना ने लगातार 10वीं बार लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 से ज़्यादा का स्कोर बनाया। ये कारनामा करने वाली वह दुनिया की पहली क्रिकेटर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। झूलन गोस्वामी ने 42 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी अगुवाई में गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 157 रनों पर समेट दिया। इसके बाद स्मृति मंदाना के नाबाद 80 और पूनम राउत के नाबाद 62 रनों के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने केवल 28.4 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में पृथ्वी शॉ ने 185 रन की नाबाद पारी खेलकर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पृथ्वी शॉ भारत की ओर से रनों का पीछा करते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसा करके शॉ ने एक साथ विराट कोहली और एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धोनी ने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वहीं कोहली ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 183 रन बनाए थे। और अब डालते हैं नज़र कल्याणी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में कल बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंधी के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।